नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 8वें सत्र में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। चक्रवात मोन्था के आगमन के साथ ही आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में भारी बारिश, आंध्र प्रदेश के 19 जिलों और ओडिशा के 5 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इस्तांबुल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दीर्घकालिक युद्ध विराम समझौते के लिए वार्ता विफल रही। केन्या के क्वाले में विमान दुर्घटना में 12 लोगों के मारे जाने की आशंका और अमरीका सरकार के बंद से हवाई यात्रा बाधित, हजारों उड़ानें विलंबित हुई। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि इस समस्या से पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में ठोस कदम उठा रहा है।
The ISA represents a significant step towards addressing this global challenge by encouraging the adoption and use of solar energy. Solar energy is a rediscovery of an ancient truth, that is, sun is the most democratic source of energy, accessible to all and belonging to none. The Solar for All initiative of the Government of India is based on this concept.
इस अवसर पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि भारत का सौर ऊर्जा उत्पादन मॉडल दुनिया में सबसे सफल है। श्री जोशी ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत 21 लाख रूफटॉप सोलर इकाइयां स्थापित की गई हैं और लगभग 50% लोगों का बिजली बिल शून्य हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत किसान सौर ऊर्जा का उत्पादन और बिक्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदस्य देश दुनिया भर के सौर ऊर्जा उत्पादन में लगभग 40% का योगदान दे रहे हैं। सौर गठबंधन के महानिदेशक आशीष खन्ना ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि 125 देशों और 50 से ज्यादा संगठनों के मंत्री और प्रतिनिधि 2 दिन की सभा के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे।
हमारा काम है कि देशों को इकट्ठा करके बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म कैसे किए जाएं, जैसे स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं जो मिलके अब जॉइंट प्रोक्योरमेंट करेंगी, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड से सारे रीजनल इंटरकनेक्शंस मिलके सारे कैसे काम करेंगे, रिसाइकलिंग के लिए सारे देशों के साथ मिलके स्टैंडर्ड्स कैसे बनाए जाएंगे और फ्लोटिंग सोलर और ग्रीन हाइड्रोजन की सारी नॉलेज एक साथ कैसे शेयर की जाएगी, ये सारे मुद्दे हम असेंबली में डिस्कस करेंगे आज और कल में।
भीषण चक्रवाती तूफान मोन्था पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर लगातार आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश तट के करीब पहुंच रहा है। इसके आज रात तट पर पहुंचने की आशंका है। करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार हवाएं चल रही हैं। आंध्र प्रदेश के तट पर समुद्र में उथल पुथल और ऊंची ज्वारीय लहरें देखी जा रही हैं। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के 19 और ओडिशा के 5 तटीय जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अधिकारियों ने बड़े आने पर लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और चिकित्सा प्रतिक्रिया दल पूरे क्षेत्र में तैनात है तथा राज्य सरकार बचाव कार्यों पर कड़ी नजर रख रही है। उधर ओडिशा के दक्षिणी जिलों में तेज बारिश जारी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत में SJ-100 नागरिक विमानों के निर्माण के लिए रूस की सार्वजनिक कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के नागरिक विमानन क्षेत्र में इस ऐतिहासिक कदम की सराहना की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि SJ-100 विमान उड़ान योजना के अंतर्गत छोटी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। नागरिक विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में इसे एक बड़ा कदम बताते हुए उन्होंने कहा कि SJ-100 देश में बनने वाला पहला पूर्ण यात्री विमान होगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्र विशिष्ट पहलों और समुद्री क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद में उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में क्षमता निर्माण स्पष्ट होनी चाहिए ताकि राष्ट्र की समुद्र सेतु उपस्थिति सतत और दृढ़ बनी रहे। नौसेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय नौसेना ने खुफिया जानकारी और सूचना के आदान प्रदान को सुगम बनाने के लिए निसार मित्र टर्मिनल विकसित किए हैं। भारत और बेलारूस ने हाल ही में मिन्स्क में 8वें दौर की उच्च स्तरीय वार्ता की। वार्ता का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के संबंधों की संपूर्ण समीक्षा करना था। इसमें राजनीतिक और आर्थिक संबंधों से लेकर सांस्कृतिक आदान प्रदान, पर्यटन और शिक्षा संबंधी विषय शामिल थे। वार्ता में ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन तथा यूरेशियन आर्थिक संघ जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समूहों के साथ और अधिक निकटता से काम करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। अबुधाबी में भारतीय दूतावास ने आधुनिक पासपोर्ट प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। इस प्रणाली के जरिए 28 अक्टूबर से संयुक्त अरब अमीरात में सभी भारतीय नागरिकों को एम्बेडेड चिप वाले ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तुर्की के इस्तांबुल में दीर्घकालिक युद्ध विराम के लिए चल रही वार्ता विफल रही। 3 दिन की ये वार्ता हाल ही में सीमा पर हुई झड़पों के बाद युद्ध विराम करने के उद्देश्य से हुई थी। इसमें दोनों देशों के कई सैनिक और नागरिक मारे गए थे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 19 अक्टूबर को युद्ध विराम समझौता हुआ था। दोनों देशों में समझौते के बावजूद गोलीबारी जारी है। 20वें पूर्व एशिया सम्मेलन में शांति और स्थिरता के संकल्प के साथ कुआलालंपुर घोषणा का अनुमोदन कर लिया गया है। इसमें रणनीतिक विश्वास को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पारदर्शिता तथा जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए अन्य सहभागी देशों के साथ साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया गया है। इस घोषणा पत्र में क्षेत्रीय विकास सहयोग, सुरक्षा नीतियों, आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी साझा करने के महत्व और क्षेत्रीय संरचनाओं पर चर्चा पर बल दिया गया है। अमेरिका में 27 दिनों से चल रहे सरकारी बंद के चलते 4000 से ज्यादा उड़ानें विलंबित हुई और लगभग 118 अतिरिक्त उड़ानें रद्द कर दी गईं। देश भर के हवाई अड्डों और हवाई यातायात नियंत्रण टावरों पर आवश्यक कर्मचारियों की कमी के कारण ये व्यवधान आया है। लगभग 13000 हवाई यातायात नियंत्रक और 50000 परिवहन सुरक्षा प्रशासन अधिकारी बिना वेतन के काम कर रहे हैं। अमेरिका के पूर्व वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो ने ट्रंप प्रशासन के व्यापार दृष्टिकोण की आलोचना की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे अमेरिका के वैश्विक आर्थिक प्रभाव के कमजोर होने का खतरा है। श्री रायमोंडो ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ एक बड़ी गलती कर रहा है। केन्या में 12 लोगों को लेकर जा रहा एक विमान तट के पास क्वाले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान डायनी से मासाई मारा के किचवा टेम्बो जा रहा था। सरकारी एजेंसियां दुर्घटना के कारणों का पता लगाने और उसके प्रभाव का आकलन कर रही हैं। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
बहरीन में एशियाई युवा खेलों में आज लड़कों के तैराकी के 4x100 मीटर मेडले रिले स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। स्पर्धा में शशि कुमार, मुरुगेश, माइलेरी और तंडाले ने 3:55 में पहला स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर थाईलैंड और तीसरे स्थान पर सिंगापुर रहा। भारत 3 स्वर्ण, 10 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 25 पदक जीतकर पदक तालिका में 11वें स्थान पर है। उधर गुवाहाटी में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में कल दोपहर 3 बजे इंग्लैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल दोपहर 2:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से बृहस्पतिवार को नवी मुंबई में होगा। साथ ही पुरुष क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मैच की श्रृंखला का आगाज कल कैनबरा के मनुका ओवल स्टेडियम में होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:45 पर शुरू होगा।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 8वें सत्र में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। चक्रवात मोन्था के आगमन के साथ ही आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में भारी बारिश। इस्तांबुल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच दीर्घकालिक युद्ध विराम समझौते के लिए वार्ता विफल रही। केन्या के क्वाले में विमान दुर्घटना में 12 लोगों के मारे जाने की आशंका। और अमेरिका सरकार के बंद से हवाई यात्रा बाधित, हजारों उड़ानें विलंबित हुई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।